सुख यहाँ लेक्चर नंबर 15। ओम नमः सिद्धे चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सहजानंद जी रचित सुख यह नामक प्रथम पुस्तक में या प्रथम भाग में पृष्ठ संख्या 66 पर हम आगे 66 ये जो नया पैराग्राफ है वहां से हम शुरू करते हैं। ये 22 नंबर का अपना श्लोक चल रहा था। यानी जब तक अज्ञान भाव है तब तक भोगों में आत्मीयता थी, मेरे है आसक्ति थी, उसमें प्रीति थी। अब ज्ञान सभा होकर भी यदि वो ज्ञान को जानने के बाद भी अगर वो पर पदार्थ में उपयोग दौड़ेगा तो क्या फायदा हो गया, ये इसकी बात चल रही थी। यहाँ पढ़ते भी हम सुख का घातक तो अज्ञान भाव है।
शोभा
अपने ही अज्ञान भाव के कारण
इकड़े
अपने ही सुख का अभाव हो रहा है।
बोल
पेज नंबर 66 पर चल रही बात। यहाँ देखो पढ़ेंगे, यहाँ से अभी शुरुआत हुई है। सुख का घातक तो अज्ञान भाव है और अज्ञान भाव जीव ने अपने स्वयं उसका अपना भ्रम है। अज्ञान का अर्थ है वस्तु के यथार्थ स्वरूप का पता न होना। ये शोभाबेन कौन से वस्तु की बात चल रही है? वस्तु के यथार्थ स्वरूप का पहचान नहीं होना। कौन सी वस्तु की यथार्थ स्वरूप का पता न होना? हमारे पास बहुत सारी वस्तुएं हैं तो उसमें से कौन सी वस्तु की बात चल रही है यहाँ पर, आपको क्या लगता है? क्योंकि हम पढ़ते तो हमें तो सही उसमें से मर्म समझना चाहिए, है ना? यहाँ क्या लिखा है देखो, अज्ञान का अर्थ क्या बताया? अज्ञान ही अपने सुख का घातक है। हाँ, तो अज्ञान का अर्थ क्या है? वस्तु के यथार्थ स्वरूप, वस्तु जैसी है वैसा उसका स्वरूप का पता न होना। तो यहाँ वस्तु है ना, कौन सी वस्तु? आप कहेंगे नलिन भाई, मैं स्वयं आत्मद्रव्य वस्तु हूँ ना मैं, और पर पदार्थ भी वस्तु है, शरीर भी परमाणु से बने, वो पुद्गल द्रव्य है, वो पुद्गल है ऐसा उसका पता नहीं, तो उसको मैंने मैं हूँ मान लिया। और मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, वो मैं एक वस्तु हूँ, तो उसका स्वरूप ही नहीं जाना, उसको माना ही नहीं। ते वस्तु स्वरूप का, वस्तु के यथार्थ स्वरूप का पता न होना, और हमारा प्रयोजन अपने को जानने से। यहाँ वस्तु
आपका कहना है द्रव्य का स्वरूप नहीं जानना। द्रव्य यानी पैसा ना।
पहले में मूल में अपना नक्की करो स्थान, क्योंकि इन सब हमें सुखी होना है, मुझे सुखी होना है, तो मैं कौन हूँ जाने बिना सुख किसके लिए करना है? तो मुझे सुखी होना है तो पहले मैं कौन हूँ ये जानना पड़ेगा। अभी तो शरीर मैं हूँ मानकर, जैसे अपने को पराये मानकर, ये किसका है तो हाँ पड़ोसी के खाते में सारा पैसा जमा कर दो, वो मेरा है मानकर, तो क्या होगा? वो मराठी में कहावत है, अंधेरा दड़ता है ना कुत्र पीठ खाता
है, गुजराती में है ना?
अच्छा,
गुजराती में है।
अच्छा,
आंधड़ो दड़े अने कुत्रो चाटे, हाँ ऐसा कुछ है।
अच्छा, यानी वो मेहनत कर रहा है और कुत्ता आकर वो खा रहा है। तो यहाँ तो हमारे अपने स्वरूप का पहले में पहले पता चलना चाहिए। वस्तु जगत में अनंत है। देखो आगे कहा, वस्तु ने द्रव्य कितने हैं जगत में, तो अनंत है। अनंत ने अनंत चाहिए आगे वाला शब्द, अनंत जीव है। अनंत पुद्गल है, एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है, एक आकाश द्रव्य है, असंख्यात काल द्रव्य है। तो हमने तो बिल्कुल एक कक्का जिसको कक्को कहते हैं गुजराती में, वैसा है, एबीसीडी है। छह द्रव्य कौन कौन से उसकी तो यहाँ गिनती की है कि जीव अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, धर्म अधर्म आकाश एक एक है, और काल द्रव्य असंख्यात है। इनमें से किसी भी एक पदार्थ को देखे, प्रत्येक पदार्थ अपनी अपनी सत्ता में है, यानी प्रत्येक वस्तु अपने में अपनी अपनी सत्ता में है, उसके अपने अपने विशेषताएं हैं, अपने अपने ही प्रदेशों में है। भले वो कितने प्रदेशी हो, जीव धर्म अधर्म तो कितने प्रदेशी है, असंख्यात। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, पुद्गल परमाणु और कालाणु एक प्रदेशी है। तो कितने भी प्रदेशी क्यों ना हो, कहते अपने अपने स्वरूप में ही अपनी अपनी एक अवस्था का उत्पाद करता है, और उसी समय पूर्व एक पर्याय को विलीन करता है। पूरे द्रव्य की मिलकर ऐसी एक अवस्था बता रहे, वो गुणों की भेद करके कथन नहीं करना है हमको, कि द्रव्य की, पूरे द्रव्य की अपनी वर्तमान अवस्था है, वो पूर्व पर्याय का व्यय होकर वो वर्तमान अवस्था उत्पन्न होती है। इसलिए कहते उसी समय पूर्व एक पर्याय को विलीन करता है, और वह स्वयं वही का वही बना रहता है। अच्छा भाई, इसके लिए कोई सूत्र याद है आपको? यहाँ क्या लिखा देखो, द्रव्य क्या आपको मिला, कहाँ पढ़ रहे हैं? नए पैराग्राफ में अभी हम चौथी लाइन। प्रत्येक द्रव्य अपनी सत्ता में और क्या करता है, अपने अपने ही प्रदेशों में, यानी अपने क्षेत्र में रहकर अपने अपने ही स्वरूप में, और क्या करता है, अपनी अपनी एक अवस्था का उत्पाद करता है। उसी समय क्या हो रहा है, पूर्व एक पर्याय को विलीन करता है, व्यय करता है, नष्ट करता है। और कैसा होता है, सब स्वयं वही का वही बना रहता है। इसके लिए कोई आपको ऐसा सूत्र मालूम है? बहुत अच्छा, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, यहाँ लिखा ना,
कौन से अधिकार का कितना सूत्र,
स्वयं वही का वही है। कौन से ग्रंथ में ये तो मालूम है कि नहीं, सत्वार सूत्र में।
वेरी गुड वेरी गुड, आधा आधा आती है तो इतना जानते हैं, पूरा नहीं आना नहीं तो इसको उठना पड़ेगा।
इसी को कहते सत द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण ही सत है, और प्रत्येक पदार्थ सत स्वरूप है। सत स्वरूप है क्या करता है, वो कायम रहते हुए अपने ही पर्याय का उत्पाद करता है, और पूर्व पर्याय का उसी समय नाश होता है। ये वस्तु का स्वरूप है, यानी प्रत्येक द्रव्य का ऐसा ही स्वरूप है। उसके लिए कोई दूसरा आवे और उसका परिणमन करा देवे, ऐसा नहीं। ये पुद्गल को क्या अक्कल है, वो कैसे परिणमन करता होगा, ये सत है ना, तो उसने परिणमन की अपनी योग्यता है, और वो स्वयं अपना उत्पाद अपने से करता है, अपना वे अपने से करता है। इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ निज निज गुणात्मक है, अनंत गुणों का पिंड है वो, तो उसके अपने अपने गुण है, निज गुणात्मक है। इस कारण किसी भी पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं, एक द्रव्य का दूसरे अन्य द्रव्य के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं। उसका थोड़ा परिणमन करा दे, उसका कुछ सहायता करा दे, ऐसी कोई बात नहीं है।
देखो जब हम कुछ नहीं जानते थे, और अभी थोड़े थोड़े तत्वों की कुछ नियम हमको जानने आए हैं, यहाँ तो बताए उत्पाद वय ध्रुव वय प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है, और प्रत्येक द्रव्य अपना अपना परिणमन करता है, दूसरे का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। ये जब हम सुनते हैं तो अभी कितनी, जिसको हम कहते हैं निरात, मतलब शांति आती है। अरे मैं तो समझ रहा था कि मैं सारी दुनिया का काम कर रहा हूँ, यानी ये तत्वों की बात समझने से अपने तरफ पलटने के लिए कितने चांसेस है, और हम ऐसे होशियार आज तक नहीं पलटे।
देखो अभी क्या कहते हैं,
किंतु
कि किसी भी पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसको किसी न किसी रूप में संबंध स्थापित करने का बहुत शौक है इसको।
गेय गाय का संबंध तो है ना,
गेय गाय का संबंध गेय गाय बताएगा, निमित्त निमित्त बताएगा, एक खेसराव गाय बताएगा, कोई ना कोई संबंध में इसको रुचि है। उन संबंध शब्द क्या बता रहा है, वो दो भिन्न है, वो इसे बताता है कि दो चीजें भिन्न है। हाँ बराबर, किंतु इस वस्तु मर्म का जिन्हें ज्ञान नहीं है, वस्तु मर्म ने वस्तु के स्वरूप का जो रहस्य है, मर्म है, उसकी जो विशेषता है, वो जिसको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, और इसी कारण संबंध बुद्धि, बुद्धि ने उल्टी मान्यता, यानी किसी संबंध में वो मान रहा है, कोई ना कोई संबंध मान रहा है, कर्तृत्व बुद्धि ने परद्रव्य का मैं करता हूँ, उसकी पर्याय मैं पलटने वाला हूँ, इसको कहेंगे कर्तृत्व बुद्धि, परद्रव्य के कर्तापने की मान्यता, उल्टी मान्यता। भोक्तृत्व बुद्धि, मैं पर पदार्थों को भोग सकता हूँ, उसमें से मुझे सुख मिलता है, ये क्या है, भोक्तृत्व बुद्धि, यहाँ बुद्धि ने वो मान्यता ली। आदि रूप अवगम है, इत्यादि रूप उसका ज्ञान चल रहा है, यानी ज्ञान भी खोटा है, मिथ्यात्व के साथ विपरीत मान्यता के साथ वो जान रहा है। सो चूंकि, यानी चूंकि का अर्थ होता है कारण की, जीव तो किसी ना किसी पद में रमने का काम करेगा ही, अवगम का अर्थ होता है ज्ञान। तो जीव किसी न किसी पद में रमने का काम करेगा, कोई संबंध जोड़कर उसमें रमेगा, या भोगने में रमेगा, या कर्तापने में, तो करता ही नहीं है, मैं करता हूँ ये उसके साथ वो उसी में मजबूर हो जाएगा।
यहाँ रमने का अर्थ कार्यकर गुण की अपेक्षा लेना क्या, श्रद्धा गुण की अपेक्षा?
नहीं, रमने का नहीं, वो तो बाह्य में उसका उपयोग लगा रहता है, उसी में उसकी रुचि रहती है, यानी रुचि पूर्वक वो उसमें लगा रहा है,
पर मैं हूँ ऐसा जानना,
केवल जानना नहीं, बाहरी बाहर उसका दौड़ता है ना, हम क्या कहते हैं कि इंद्रियों के पीछे दौड़ रहा है, धन के पीछे जो दौड़ रहा है, वो रमना, यानी उसमें उसकी रुचि है और उसी के प्रयत्न सारे उसके प्रति चल रहे हैं, ये रमने में सब ले लेना उसमें। लो यो आप वह भोगों में रमने लगा, रमने लगा ने, इसको चखू, इसको भोगू, इसको खा लो, इसको सूंघ लो, इसको देखो, ये क्या है, भोगों में रमने लगा। भोगों में हित बुद्धि की, यानी वो मेरे लिए अच्छे है, ये हित बुद्धि की। अब इंद्रिया तो हमारी कमजोर होने लगी, तो क्या बादाम खाओ और क्या और कहने वाले भी मिलते हैं ना। इसी कारण दीन पुरुष की भांति, दीन ने कोई बेचारा ऐसा यार बाहर बाहर ही दौड़ लगाता रहता है, यह दौड़ लगाता है ना, उसके उपयोग हमेशा बाहर ही चला जाता है, वो अपने स्वरूप के संबंध में विचार करने के लिए भी वो तैयार नहीं, और कहते हैं मुझे फुर्सत ही कहाँ है, और कहाँ दौड़ लगा रहा है, बाहर ही बाहर। हाँ, बड़े कष्ट की बात है कि ज्ञान स्वभावमय होकर भी मैं दीन की भांति पर पदार्थों में दौड़ लगाता हूँ, नाना आशाएं रखकर। देखो हम अपने जीवन शैली कैसी बना ली है, पहले तो छोटे थे तो 4 घंटे तो स्कूल में जाते थे, फिर उसका ही होमवर्क, उसी की बात, और वही वही धुन चलती थी। अभी पढ़ लिख कर बाहर आ गए, अभी कमाने धमाने की, उसके लिए कितना समय देते हैं, 8 घंटे तो नहीं, वो पूरे 24 घंटे अपने सिर पर सवार है, कैसे पैसे कमाना है, कैसे उसमें लगाना है, किसमें रखना है, कैसे उसको बढ़ाना है, यानी वो पूरी धुन भी, वो विचारों में भी वही है, कार्य भी वही है, इसके पीछे दौड़ लगा। और जो सर्वोत्कृष्ट ऐसा अपना ज्ञान स्वभाव है, और जिसको जानने से सच्चा सुख भी मिलेगा और मुक्ति प्राप्ति भी, उसके लिए कितना समय हमारे पास, यानी हमने ऐसे अपनी शैली बना दी जीवन का, ऐसा जो डेली रूटीन ऐसा बना दिया है कि इनके पीछे तो हम दौड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारा वो खाना बनाओ और फिर खाओ, उसे भी टाइम जाता है। देखिए पर पदार्थ में दौड़ लगाता हूँ क्यों, नाना आशाएं रखकर, उस दिन बात आई ना, बात आई थी जीवन की आशा, भोगने की आशा, इसकी आशा, विषय की आशा, अब ऐसा नहीं होगा, यानी वो जीव स्वयं ही ऐसा निर्णय करे, प्रण करे, जब तक मेरे अज्ञान था तब तक मेरे भोगों में प्रीति थी, अब अज्ञान मिटा तब अब अन्यत्र मैं नहीं दौड़ूंगा। ये स्वयं कह रहे हैं ग्रंथकार, मैं तो अपने आप में ही रमकर स्वयं सुखी होऊंगा। यानी क्योंकि पहले तो जानता नहीं था, अज्ञानी था तो दौड़ता था, अब ज्ञानी होकर भी दौड़ू तो इसमें क्या फायदा है, तो कहते अभी मैं नहीं दौड़ूंगा, इस तरह से कहते हैं। और इस यानी इससे तो हमें भी वैसे प्रेरणा लेनी। 23 नंबर को पढ़ेंगे, ज्ञातृत्वं मयि सर्वेषु स्वायत्तं साम्य संयुतं कस्य कः ज्ञातृतां दृष्ट्वा स्याम स्वस्मै स्वे सुखी स्वयं। अपने ही आधीन समता से संयुक्त ज्ञातापन, ज्ञातृत्व का ना, मुझ में और सबों में विद्यमान है, मई और सर्वेश्वर। और कैसा है वो स्वायत्त है, स्वायत्त ने अपने अधीन है, स्वतंत्र है। और कैसा है साम्य संयुतम, यानी जो स्वयं अपने अधीन है और जो समता से संयुक्त है, ऐसा ज्ञातापन। ज्ञातृत्व क्या है, ज्ञातृत्व है नहीं ज्ञातापना, ज्ञाता दृष्टापना। तो ज्ञाता प्रश्न दृष्टापना तो साम्य, साम्य भाव उसी को कहेंगे, ज्ञाता दृष्टा रहने को ही यहाँ साम्य भाव कहेंगे। और ये अपने अधीन है, कोई जबरदस्ती अपने को नहीं कह रहा कि आप ऐसा मानो वैसा मानो, यही कह रहे कि अपने ही अधीन साम्य भाव से युक्त यानी समता से संयुक्त ज्ञातापन यानी ज्ञातृत्व किसमें है, तो कहते मुझ में भी है और सबों में विद्यमान। किसका कौन है, इसलिए ज्ञातापन को देखकर, कस्य कहा लिखा ना, इसलिए क्या करना है, ज्ञातृतां दृष्ट्वा, ज्ञातापने को ही देखते रहना है। ज्ञातापन को देख करके मैं अपने में, अपने लिए स्वयं सुखी होऊं। यानी सुखी होने के लिए क्या करना है, अपने ही ज्ञातृत्व भाव को देखना है, उसी को जानना है, क्योंकि मैं ज्ञाता ही हूँ और ज्ञातापने को ही हमें जानना है। ज्ञातापने ने अपना स्वभाव, जीव का स्वरूप है ज्ञातापना, ज्ञान स्वरूप होना, प्रतिभास बसा हुआ है, प्रतिभास स्वरूप होना है ना,
वो बसा हुआ है,
वो बसा लिखा गया है, भास करना, प्रतिभास है ज्ञान। ये ज्ञान के लिए अवगम शब्द आता है, अधिगम आता है, और प्रतिभास आता है, परिचिति आता है, बहुत सारे। वह ऐसा स्वरूप है कि समता तो उसमें अपने आप ही भरी हुई है। क्या कहा, ज्ञातापना ऐसा है कि उसमें अपने आप ही समतापना है, उसके लिए कोई और कुछ नहीं करना है। केवल जानना जो है उसमें राग द्वेष नहीं होता, यानी हमारा स्वभाव ज्ञान ज्ञातापने का है, तो अपने स्वभाव में राग द्वेष है कि नहीं है नक्की करना पड़ेगा, है स्वभाव में है तो कभी नहीं गो, तो नाश नहीं हो सकता। तो ज्ञाता स्वभाव है तो वो राग द्वेष रहित ही होता है, ज्ञातापना में कोई राग द्वेष नहीं। तो प्रतिभास यानी ज्ञान स्वरूप, उसी के लिए उन्होंने दो तीन शब्द डाले, ज्ञातापना कहो, ज्ञान स्वरूप कहो, प्रतिभास स्वरूप कहो, एक ही बात है। यानी जानने मैं हमारा स्वरूप है, केवल जानना है यानी हम मात्र जानते ही है, तो जानने में तो कोई राग द्वेष नहीं होता है। राग द्वेष होता है तब जब जानने से आगे बढ़ता है, उस कल भी बात आई है ना, जानने तक रुको उसके आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो यानी क्या, मात्र जानने वाला हूँ ये नहीं मानकर हम राग द्वेष करने के लिए वो मेरा स्वरूप है मानकर बैठते। यहाँ वही कह रहे, देखो क्या कहा, राग द्वेष होता है तब, यानी तो हम जब और तब कहते हो, पहले तब लिख गया उन्होंने, यानी राग द्वेष तभी होता है, कब होता है कि जब ज्ञान जानने से आगे बढ़ता है, यानी मात्र जानने मात्र नहीं रहता, उससे आगे बढ़ता है, यानी राग भी करने लगता है। हाँ, केवल जानने से राग नहीं द्वेष नहीं, मात्र जानने तक ही वो अपने को मानता तो उसमें जानने मात्र में कोई राग द्वेष नहीं होता, ये उसने मान लिया, आगे जाके राग द्वेष कर लिया, उसने इष्ट अनिष्ट मान लिया, ऐसी समता वाला ज्ञान आत्मा का जो स्वरूप है, यानी आत्मा का स्वरूप ही ऐसा ज्ञान है बिना राग द्वेष का, ये आत्मा का स्वरूप ही है, उसके लिए कुछ नहीं करना, वो आत्मा का सहज स्वभाव है, वह स्वाधीन है। तो सामने पदार्थ होगा तभी जानेंगे ना हम, तो जानना 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 ये हमारे स्वभाव है, स्वाधीन है, सहज है। जो स्वाधीन स्वरूप है उसमें संतोष व आनंद उत्पन्न होता है, और हमने वो राग द्वेष रूप अपने को माना तो वो तो दुखमय भाव है, और ये तो स्वाधीन है, अपना भाव है, सहज भाव है, तो उसमें तो संतोष भी और आनंद भी है। और जो स्वाधीन नहीं है, पराधीन है, उसकी उपासना विपदा उत्पन्न करती है। उसकी उपासना है ने उसी को जानते रहना, राग द्वेष में उलझे रहना, यहाँ क्या कह रहे हैं कि ज्ञान तो स्वाधीन अपना स्वभाव है, और वो ज्ञान तो होता ही सामने स्वरूप। अब उससे आगे बढ़कर क्या करता है, ये राग द्वेष करने लगता है। तो कहते जो स्वाधीन नहीं है, पराधीन है, उसकी उपासना, देखो ज्ञान की उपासना ने ज्ञान में ही एकाग्र होकर रहना, इसको ज्ञान की उपासना, आत्मा की उपासना कही। अभी किसकी उपासना चल रही है, राग, राग को ये मेरा स्वरूप है ऐसा कहकर और वो अपने को हितकारी ऐसा समझकर वो कर रहा है। तो कहते उसकी उपासना क्या करती है, विपदा उत्पन्न करती है। विपदा यानी संकट। लोक में भी देखो जो बात पराधीन है उसकी इच्छा से विपदा है, और जो अपने स्वाधीन है उसमें उतनी विपदा नहीं, उतनी विपदा नहीं, परंतु ये इच्छा है ना, इच्छा इत्सेल्फ विपदा है, इसलिए उतनी विपदा नहीं जो स्वाधीन बात है। यद्यपि लोक में बाहरी चीज कोई स्वाधीन नहीं, सब पराधीन है, तब भी एक मोटा दृष्टांत दिया, यानी ये तो यहाँ पूछा था ना, लोक में भी जो बातें पराधीन है उसकी इच्छा विपदा है, और जो बातें लोक में जो स्वाधीन है उसमें विपदा नहीं है, तो दृष्टांत के लिए बताया। वैसे लोक में कोई भी चीज हमारे स्वाधीन नहीं, वो सब पर वस्तु है, वो हमारे अधीन है ही नहीं, ये दृष्टांत देने के लिए ये बात बताई। समझ आती बात, ये क्या दृष्टांत दिया, इसलिए कहते आगे उसे ही सुधारा कि बाहरी चीज कोई स्वाधीन है ही नहीं है, फिर भी हम लौकिक में कहते ये मेरी है और ये पराई, तो अपनी चीज भोगने में तो क्या है, कोई स्वाधीन है, और पर की चीज लेने में तो कितनी पराधीनता है, वो देगा तो हम ले लेंगे, इसलिए वो तो स्थूल दृष्टांत दिया। पराधीनता से दुख है, सब पराधीन है, धन वैभव का मिलना पराधीन है। ऐसा क्यों कहते हैं मिली भाई, आप तो स्वाधीनता से धन कमा रहे हो ना, ये तो परद्रव्य है, वो स्वयं उसका संयोग होना वियोग होना जो उसके अपने आधीन है, उसके अपने आधीन है। निमित्त की बात कहना है तो हम कहेंगे वो तो पुण्य कर्म, पर सारा पुण्य कर्म से पैसा ही मिलता है, किसी को ऐसा नहीं लगता कि पुण्य कर्म से स्वाध्याय मिल रहा है, यानी हमने उसी को अच्छा माना है। पैसे की बात आती तो वो पुण्य बराबर याद आता है,
भरोसा होता
है, परंतु बहुत बहुत भाग्य की बात है, मैंने कोई ऐसा पुण्य किया है तभी ये सच्ची बात ख्याल, क्योंकि ये तो सुनाने वाले तो आज कितने बढ़ गए सारे, घर घर में आके सुनाते हैं, नहीं मालूम अब टीवी में चैनल भी बनेगा, हाँ चलता रहता है कुछ ना कुछ,
भाग्यवान है ना सब लोग,
हाँ भाग्यवान है इसलिए घर में आके सुनाते हैं। और कषाय विषय का होना पराधीन है, धन वैभव का मिलना भी पराधीन है, ये पराधीन है ना, कर्मों के उदय वहां निमित्त पने से पाए जाते हैं, इसलिए पराधीन का। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जो ज्ञान स्वभाव है उसके बस की बात नहीं कि कषाय कर ले,
क्या
इसके अधीन है नहीं, इसको पराधीन कह दिया क्योंकि वो भी कर्मों के तो ज्ञान स्वभाव है, उसके अधीन नहीं कैसा कर रहे, सिद्ध भगवान कैसा नहीं कर सकते, उनके अधीन नहीं है ये कह रहे। और यहाँ पर ये जो हो रहे हैं उसको हम जानने वाले करने वाले नहीं, ये नक्की करना है। कषाय उत्पन्न होती है वह भी कर्मोदय की अधीनता है, यह निमित्त का ज्ञान कराने के लिए बता रहे हैं। जीव स्वयं अपनी मूर्खता से उसको अधीन हो लेता है, ऐसा नहीं कि क्या करे कर्म का उदय है वो मिट जाएगा तो हम वितरागी हो गए, तो कर्म की प्रार्थना करनी पड़ेगी, अरे बाबा मुझे छोड़ अभी बहुत दिन आपने हमको घुमाया। शरीर मिलता है वह कर्म के अधीन है, स्वाधीन चीज तो कुछ मिलेगी ही नहीं। पर पदार्थ में कुटुंब के लोग हैं, वे भी अपनी न्यारी सत्ता वाले, क्या कहते हमने देखा क्या नक्की किया, प्रत्येक पदार्थ सत्ता स्वरूप है, वो स्वाधीन है, वो भी अन्य जीव है, वो भी अपने सत्ता में है, न्यारी सत्ता वाले हैं, वे अपनी अपनी परिणति के अधीन है।
न्यारी यानी अलग,
न्यारी यानी पृथक है, अलग है, जुदी है। मित्रजन है जिन्होंने कुछ उपकार किया वे भी पराधीन ही है, यह सब कुछ मेरा नहीं, मेरा धन तो अपना अनंत आनंद चैतन्य स्वरूप है और वो हमारा धन कोई लूट नहीं सकता, उसमें कहाँ रखना है कैसे उसको बढ़ाना है कोई चिंता नहीं, बिल्कुल स्वाधीन है कि मेरा धन तो अपना अनंत आनंद चैतन्य स्वरूप है और इसका कभी नाश भी नहीं होने वाला। सत्य की दृष्टि में कोई धोखा नहीं, खतरा नहीं, कोई क्लेश नहीं, यानी कोई झंझट कोई बात ही नहीं ना टेंशन वाली। आत्मस्वरूप की दृष्टि में कोई धोखा नहीं, खतरा नहीं, कोई क्लेश नहीं। आत्मस्वरूप की दृष्टि से जो चिक जाते नहीं छूट जाते, चुत हो जाते हैं उनको तो वैभव भी विपत्ति ही है। क्या कहना चाहते हैं, आत्मस्वरूप की दृष्टि यानी सम्यक दर्शन, तो जिनके अपने आत्मा की दृष्टि छूट गई है, सम्यक दर्शन छूट गया है, मिथ्या दृष्टि हो गए, मान लेते पहले थे और अभी छूट गए, या जिनों को कभी प्राप्त ही नहीं हुआ, उनके लिए क्या है, उनको तो वैभव भी विपत्ति ही है। बाह्य जो वैभव है, धन संपदा है, वो उनके लिए विपत्ति है, संकट है। तो पहले हमने श्लोक देखा था, ये वैभव मिलता है उससे मद होता है, उससे क्या क्या होता है, वो सब बात। मोह में जीव को सर्वत्र मूढ़ता है और मोही जीव को संपदा के बीच में भी विपत्ति है, मोह है, क्योंकि उसकी मोह इटसेल्फ विपत्ति है, उसके राग द्वेष ही उसकी विपत्ति है, इसलिए मोही कहा जाता है। वैसे तो मोह, मूढ़ता व अज्ञान सब एकार्थक है, यानी एक ही अर्थ में ये आते हैं शब्द, किंतु लोग मोही सुनकर तो बुरा नहीं मानते, लोग मूढ़ सुनकर बुरा मानते हैं, बात एक है। मूढ़ तो मोह करने से बना है, कुछ कहने से नहीं, यानी किसी को मूढ़ कह देते तो उसको गुस्सा आएगा, मोही कहने से उसको अच्छा लगता है। एक आदमी था बेवकूफ, उसका नाम मूरखचंद रख दिया है लोगों ने, उसे सब लोग मूरखचंद कहते थे। वह गांव के बाहर भग गया और रास्ते में कुआं था, उसने पैर लटका कर बैठ गया। इतने में एक आदमी निकला और उसे इस तरह जब देखा तो बोला, अरे मूरखचंद कहाँ बैठा है। उसने प्रेम से उसको गले लगा कर कहा, कैसे आपने जाना कि मेरा मूरखचंद नाम है, किसने तुम्हें बताया कि मेरा नाम मूरखचंद है। तब वह मुसाफिर बोला कि तेरी करतूत ही बताती है कि तुम्हारा नाम मूरखचंद है। ये हमारे नेमचंद जी काका भी एक ऐसी कथा सुनाते थे, ऐसा ही एक आदमी गांव में, सब उसको पागल पागल कहते थे, उसने जाए एक गांव छोड़कर चले जाए, वो भी जाते जाते कुएं पर पहुंचा,
नहीं नहीं कुएं पर नहीं पहुंचा,
नहीं वहां वो एक पाइप से पानी आ रहा था बाहर नल के।
हाँ।
अच्छा,
पाइप से ही पानी गिर रहा था,
पाइप से गिर रहा था या नल से पानी गिर रहा था, खेत में जा रहा था तो उसके नीचे उसका हाथ लटका है, से पानी पीने लगा और पीने लगा तो थोड़ी देर में उसके एक छोकरे ने कहा कि उसको ए पागल, क्यों पागल क्यों कहा, तो जैसे कोई ऊपर से पानी डालता है और पानी पीना हो गया तो हम कैसे मानते हैं अभी बस ऐसा करते हैं ना, तो ऐसे अभी बस कर कहने लगा मेरा हो गया नल को ही कहने का भी मेरा बस हो गया यहाँ। और ये ऐसी कुछ अलग स्टोरी बताई थी, तो कहते तेरी करतूत ही बताती है तुम मूर्ख है। तो भैया उपादान हम लोगों का अशुद्ध है तो मोही ही है।
करतूत यानी उसकी क्रिया,
करतूत यानी कार्य उसका, करतूत जिनका उपादान है जिस जिस रूप उनका नाम वैसा पीछे पड़ा। करतूत है तब नाम पीछे है, यह नहीं कि नाम पहले रखा है कर्तव्य पीछे। उसको मोही कहा मूर कहा तो उसके कर्तूत के अनुसार उसका नाम है। कर्तूत पहले नाम बाद में, ज्ञान उसको ही कहते हैं जो अपने ज्ञान के स्वरूप को जान जाए उसका नाम है ज्ञान। क्या कहा, आत्मज्ञान ही ज्ञान के ज्ञान कहते ना, जो अपने ज्ञान के स्वरूप को जान जाए उसका नाम है ज्ञान। और जो अपने ही ज्ञान को स्वयं न जाने और दुनिया के सारे पदार्थों को जानता है उसको कहते हैं अज्ञान। मैंने सारे दुनिया का ज्ञान कर लिया, उसने साइंटिस्ट हो गया बड़ा, तो कहते अपने को नहीं जाने, आत्मज्ञान नहीं है तो सारा ही अज्ञान। यह मोक्ष मार्ग में ज्ञान और अज्ञान की पद्धति है। कोई कितने ही ठाट बाट बना ले, कितनी ही संपदा जोड़ ले, परंतु शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक अपने सहज ज्ञान स्वरूप ही मैं हूँ इतना स्वयं में ही यह न मान जाए। कितना सीधा सरल रास्ता है शांति का। लोगों को लगता है अरे वाह या अमेरिका में हो या वो तो स्वर्गों में हो कितना सुखी हो गए जी, है ना। अरे पर जब तक अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानता है वो सारे ही जीव दुखी, संयोगों से कोई सुखी हुए ही नहीं आज तक। मैं ही स्वयं का स्वयं में सब कुछ हूँ यह प्रत्यय हुए बिना, यानी ऐसी प्रतीति हुए बिना शांति नहीं है। जिसको कहूंगी ना मैं तो स्वयं पूर्ण हूँ, मैं ही स्वयं का स्वयं में सब कुछ हूँ, अपने आप जैसी सत्ता है वैसा न माना जाए तो अपने में तब तक शांति नहीं मिलेगी। कैसी हमारी सत्ता, स्वयं उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप है, स्वयं अपने में अपनी पर्याय तो अपने से ही होती है, यानी वो परिपूर्ण है। और स्वभाव तो ज्ञान स्वरूप है, वो राग वाग करने का इसका स्वभाव ही नहीं है। तो ऐसा अपने को जब तक नहीं मानेगा तो जैसी सत्ता है वैसा न माना जाए तो अपने में तब तक शांति नहीं मिलेगी। लेकिन मोही प्राणी ने, अब कहो मूढ़ प्राणी ने, अज्ञानी प्राणी ने अपने को बीसों तरह का मान रखा है। यह एक तरह का सर्वसाधारण चेतना मात्र एक रूप, परंतु मान रखा है बीसों तरह का अपने को। ये बीच में दंड नहीं चाहिए, बीसों तरह का है ना, अनेक प्रकार का अपने को क्या क्या मान लिया। अमुक आकार का मैं हूँ, यानी मैं इतना ऊंचा हूँ या मैं ठीना हूँ या मैं जो जो कुछ हो, जाड़ा हूँ ठीना हूँ पतला हूँ मोटा हूँ, मैं अमुक जाति का हूँ ऐसा अनुभव है, अफसर हूँ मैं ऐसी इज्जत वाला हूँ, बाप हूँ मामा हूँ बच्चा हूँ, कितने तरह का मान रखा है कि गिनती तक नहीं कराई जा सकती। भीतर से इतने विकार विकल्प उत्पन्न होते हैं जितना कोई बयान नहीं कर सकता। मैंने जैसा जैसा अपने को मानता है वैसे वैसे विकल्प भी करता रहता है। तो बोलो कितने रूप अपने को मान रखा है, अनगिनती रूप अपने को माना है। ये कहते हैं हमने घर में हम स्त्री है मैं माता हूँ, फिर बाहर चले रास्ते पर चल रहे तो हम पथिक है, दुकान में गए तो हम ग्राहक है। अब ऐसे सोच लो दिन में क्या क्या करते हुए हमारी, हाँ अलग अलग पान जैसे हम कर रहे हैं, है ना, अनगिनती रूप अपने को माना है तो यह एक रूप का, जैसा भगवान वैसा मैं चेतना मात्र हूँ, है ना। इतने में अपने को कभी उसने ज्ञान स्वरूप तो माना ही नहीं, बाकी सब मैं माँ हूँ, मैं बच्चे हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ यही मान रहा है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं कौन हूँ, मैं मुमुक्षु हूँ, चल रहे ना, या मैं स्वाध्याय में जाती हूँ, मैं अभी सोता हूँ, मैं वक्ता हूँ, इतना ही अपने को मान लिया। तो जैसा भगवान है मैं ऐसा मैं चेतना मात्र हूँ, किंतु मान रखा है अन्य रूपों में ज्ञान को, ज्ञान को अन्य रूप से मान लिया, तो ज्ञान को राग रूप भी मान लिया। मैं ज्ञाय स्वरूप है ऐसा नहीं मानते हुए, अरे मैं पुण्य वाला हूँ, पाप वाला, अरे मैं तो मिथ्या दृष्टि हूँ, यानी वो ज्ञान को वैसा मान रखा उसने, वो मेरा स्वरूप है ऐसा मान रखा। तो मिथ्या तो भले हो परंतु मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ये तो निर्णय करना है ना उस समय भी। तो अपने को अन्य रूपों में ज्ञान को मान रखा है, कैसी मूर्खता है। मूर्खता, मूढ़ता, मोह सब एक ही बात है, जरा भी अंतर नहीं है। चाहे मोही कह लो, चाहे मूढ़ कह लो, मैं स्वयं अपने आप कैसा हूँ इसका निर्णय ही सच्चा ज्ञान है। यानी उसका निर्णय तो करना है हमने, और इसका निर्णय करने इतना ज्ञान तो हर संगी पंचेंद्र के पास है। इतना ज्ञान हो जाने के बाद फिर लौकिक ज्ञान भी चलता रहे तो भी यह जीव अज्ञानी नहीं कहलाता। क्या कहना चाहते हैं? पहले भी उसको कोई साइंस का ज्ञान था, कंप्यूटर का था, मेडिकल का था, ये था वो था, वो तो आत्मा का ज्ञान नहीं था, उसको अज्ञानी कहते। अभी उसने अपने आप को पहचाना है ना, अपने आप हूँ ऐसा निर्णय सच्चा ज्ञान उसने कर लिया। अब उसका बाकी ज्ञान चला जाएगा क्या? रहेगा, रहेगा ना। तो क्या कहते हैं, अभी लौकिक ज्ञान भी चलता रहे तब भी इसको अभी अज्ञानी नहीं कहेंगे, पहले उसी को अज्ञान कहेंगे। अब उसने आत्मा को जान लिया उसको ज्ञानी कहेंगे, यानी उसके बाह्य पदार्थ संबंधी भी वो ज्ञान अभी सच्चा कहलाएगा। पहले उसी ज्ञान को मिथ्या ज्ञान नाम देते थे, अब वो भी सारा उसके समय ज्ञान में आ गया, क्योंकि वहां पर भी उसने आत्मा वो भिन्नता से जान रहे ना अभी, वो तो जो कुछ कौजलिक ज्ञान उद्गल के बारे में, मैटर के बारे में, आत्मा, यानी अभी उसने भेद ज्ञान से ही जान लिया, अब वो उसका सारा ज्ञान अभी सम्यक ज्ञान कहलाए।
हाँ,
उल्टा कह दे, हाँ वो तो औदयिक अज्ञान कहलाए। हाँ, वो जितना जान रहा है वो उसका सम्यक ज्ञान। क्योंकि वास्तविक ज्ञान के कारण मोक्ष का, मोक्ष मार्ग का ज्ञान प्रकट हो गया। मैं प्रभु समान चैतन्य स्वरूप एक पदार्थ हूँ, इसका किसी से संबंध नहीं, इसको किसी की अपेक्षा नहीं। यानी प्रत्येक द्रव्य मैं भी स्वयं अपने से हूँ, और मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ। किसी के साथ, अरे शरीर के साथ भी संबंध नहीं तो अन्य की बात क्या है? यह तो बिल्कुल स्वतंत्र है, ऐसा अपना स्वरूप अनुभव में आए तो मुख्य ध्यान ज्ञान तो हो ही चुका। यही सच्चा ज्ञान। क्या कहा? ये बिल्कुल स्वतंत्र है, ऐसा अपना स्वरूप अनुभव में आए। पहले में क्या बताया, मैं तो चैतन्य स्वरूप एक पदार्थ हूँ, किसी के साथ कोई संबंध नहीं है और किसी की कोई अपेक्षा नहीं है। शरीर है तो मैं जीऊँगा, अन्न है तो ये तो मैं टिका रहूँगा, ये कोई बात नहीं, कोई किसी की अपेक्षा नहीं है। बिल्कुल स्वतंत्र है और उसने अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया तो मुख्य ज्ञान तो हो चुका। लौकिक बातों का ज्ञान न हो सके नहीं सही, उससे मोक्ष मार्ग में बाधा नहीं आती। बाहर दुनियादारी में वो भले मूर्ख भी कहलाए, कोई बात नहीं, उससे उसका मोक्ष मार्ग में कोई अड़चन आने वाली नहीं है, बाधा नहीं है। एक यह ज्ञान हुआ कि बाद में फिर सभी बातें ठीक होती चली जाती है। एक बर्तन सीधा नीचे रखे तो तुम उसके ऊपर सारे घड़े सीधे रखते चले जाओ, तीसरा घड़ा रखोगे सीधा आएगा, उल्टा कोई नहीं आएगा। ये हमेशा उदाहरण देते हैं ना, ये कुम्हार के पास ये मटके रखे जाते हैं बहुत सारे, तो पहला ऐसा औंधा रखेंगे तो दूसरा तीसरा चौथा, तो उसके ऊपर भी एक एक उस रास करते चले जाते हैं सारे, औंधे के औंधे, एक सीधा रखो तो सारे सीधे, सब सीधे होते हैं। तेरी आत्मा को स्वयं ज्ञान हो गया तो जो तू करेगा सो ठीक होगा, बनावट की बात ज्ञान में नहीं आएगी, जो करोगे सीधा करोगे क्योंकि मूल में अपने में सीधा बना रखा है, यह सत परिणाम रक्षक है उसका। दूसरा तो दूसरा ही है, उसका तो उसमें अत्यंत अभाव है। क्या कहना चाहते हैं? पर पदार्थों में मेरा कोई संबंध नहीं, अत्यंत अभाव। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में जो अभाव है उसको कहेंगे अत्यंत अभाव। आपने सुने कि नहीं अभाव? हाँ सुने। उससे मेरी रक्षा हो ही नहीं सकती, जो मेरे में है ही नहीं, जिसका मेरे अभाव है वो मेरा रक्षक कैसे हो सकता है। उसकी रक्षा यही है कि बनावट सजावट दिखावट इससे दूर रहे, इसी से सारा जीवन उसका ठीक होता चला जाता है। क्या ऊपर बताए ना, तो स्वयं का ज्ञान हो गया तो बनावट की बात उसमें रहती नहीं है, तो अपनी रक्षा कैसी करनी है, तो बनावट सजावट दिखावट से दूर रहिए। खोटी बनावटी, हम कहते बनावटी माल है, खोटा माल।
ये पार्लर जो चल रहे हैं ना वो सब बनावट माल,
वो तो दिखावट है।
वही दोनों है, बनावट कहो दिखावट कहो सजावट कहो, हाँ। तीनों एक ही बात है।
माल कैसा है? बनावटी है। बनावटी है तो शिक्षा नहीं, असली नहीं है, नकली है, हाँ। उसको बनावटी कहते हैं। अनित्य अन्य भी इसमें ले सकते हैं,
मायाचारी
हो, सब दिखावा है ना, दिखावा यानी मायाचारी हो गई ना सारी। दिखावटी है क्या? दिखाने के लिए कुछ और है कुछ और, जो कुछ के लिए धन नहीं है, फिर दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत धनवान हूँ, ये क्या हुआ? दिखावटी हो गया ना उसके। अभी पता नहीं, हम जाते नहीं कई बार घर से छोड़कर, हम तो स्वाध्याय में बैठते हैं।
क्या बोलते हैं मैं सुन लेंगे,
आजकल यही चल रहा है सब। आपको ऐसे दिखते, हमको ऐसे कोई नहीं दिखता, हमको तो आप लोग दिखते हैं स्वाध्याय, रोज आते हैं,
अच्छे अच्छे लोग। आज एक भाई साहब आए थे, वो मुझको पूछ रहे थे, वो 6 तारीख का आपका वहाँ प्रोग्राम है। मैंने कहा हाँ है, तो उसमें कोई ड्रेस कोड है क्या?
हाँ, वो वहाँ कच्छ में होता है ना।
मैंने बोला भाई कपड़ा चाहिए, कौन सा भी था।
उससे आगे बढ़ना चाहते तो चलेगा, जंगल में जाना चाहते।
यानी ये दिखावट, ये नहीं, ये अभी जो उदाहरण दे, क्योंकि हर जगह चलता है ना ऐसा, क्या व्हाइट टू व्हाइट चाहिए, टोपी पहनना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। यहाँ उससे मैं भिन्न हूँ बताना है तो
पहले नक्की करना है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ।
वहाँ तो सफेद कपड़ा पहनने से वृत्ति भी सफेद होती है, ऐसा काले मन वाले मानते हैं।
देखो उसका
हमारे साथ आई है, हमको मालूम है
उसका स्वभाव है ज्ञाता बनना।
मैं सच कहता हूँ, हमको जब वहाँ बुलाया था, हमने कहा देखो भाई तुम्हारा ड्रेस कोड फ्रेस कोड रहेगा, मेरे पास तो सफेद कपड़ा नहीं है, मैं है वैसे आऊंगा। हाँ आपके लिए नहीं, वो सबके लिए। अच्छा ठीक है, क्यों मैं नाची वक्त की खोटी?
देखो आगे देखते हैं, यानी उसकी अपनी रक्षा कैसी है, बनावट सजावट दिखावट से दूर रहे। उसका स्वभाव है ज्ञाता बनना, जान लेना, यहाँ तक कि उसमें विकार नहीं कुछ।
क्या बात है,
पवित्र तो मैं हूँ, इतना काम करने से तो मैं स्पष्ट पवित्र हूँ, कितना ही जान लो, केवल जानना ही जिसका स्वरूप है उतना जान लो। जानना आत्मा का स्वभाव है, उससे आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता। लोगों को लगता है ना, ये तो जानने क्यों, इतना हम जानेंगे, शिविर में क्यों जाना, इतना क्यों जाना, ये जानना तो स्वभाव है। राग द्वेष सहित अगर उसमें विकल्प में जुट जाओ तो वो राग द्वेष विभाव है, और ज्ञान तो अपना अपना स्वभाव है, उसमें तो ज्ञान की निर्मलता होती है क्योंकि सही जानने में हम जुट गए। तो जानना आत्मा का स्वभाव है, उससे आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता, पर जानने के अतिरिक्त जो परिणाम पैदा होते हैं, राग करने के, पक्षपात करने के भाव बनते हैं, तो विपदा ही विपदा है, सारा काम बेकार है, अपवित्र है, इसकी बर्बादी के कारण। जानने से नहीं होगी बर्बादी, उसके आगे बढ़कर ये राग द्वेष में अटका है, पक्षपात करने के, अहंकार के, जो जो अभी सारे जोड़ लो उसमें। सो भैया यही भाव रखो कि केवल ज्ञाता बनना है, और यह ज्ञाता स्वयं के समझने के लिए होना है।
क्या बात,
एक ज्ञाता रहकर पूरी दुनिया, रुचि तो बाहर की जानने की है, और वो भी राग द्वेष से ही जानने में रुचि है, और कहता नहीं नहीं मैं ज्ञाता दृष्टा बनने से सबको जानता हूँ, वो नहीं। ज्ञाता स्वयं के समझने के लिए होना है। आत्मा का सहज स्वरूप शुद्ध है, राग द्वेष क्लेश भी जहाँ नहीं है, और यह सभी स्वाधीन है। मैंने उसने कुछ नहीं जो है उसको एक्सेप्ट करना है और कुछ नहीं करना है, यानी राग द्वेष से भेद ज्ञान करना है, क्योंकि वो हमारा स्वरूप ही नहीं है, हमारा स्वरूप तो ज्ञान मात्र है। तो राग से विमुख होकर ज्ञान को ही जानते रहे, बस इतना ही करना है। बाकी यह सब बातें जो सबको आसान लग रही है, श्रम करके होती है, यानी इसमें तो श्रम ही श्रम है, क्योंकि पराधीनता है सारी, और उसको हासिल करने की कोशिश करता है, तो उसमें तो ये राग द्वेष के श्रम हो रहे हैं उसको। देख लो कैसा उसका स्वरूप है, कैसा आपका स्वरूप है, कैसा जीव का स्वरूप है, किंतु मोही जीव यथार्थ न देख कर आपको अन्यथा देखता है, आपको यानी अपने को, यानी अपने को ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसा नहीं देखकर मैं शरीर रूप हूँ, मैं राग रूप हूँ ऐसा देख लेता है, मैं धनवान हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं बच्चे वाला हूँ। यह पर्याय धुन अनित्य है, ऐसा अपने बारे में तो सोच नहीं पाता, दूसरे को जरूर अनित्य समझ लेता है। बिचारा धुन यानी उसकी जो पर्याय की धुन लगी, यानी उसकी तो लगन लगी है, पर्याय धुन यानी पर्याय मात्र अपने को मान रहा है,
पर्याय बुद्धि कहो ना,
पर्याय की धुन यानी जो अपने को पर्याय जितना समझ रहा है। या अभी हम देखो ना, मनुष्य है पर्याय, तो मनुष्य पर्याय हूँ, तो मनुष्य की अपेक्षा तो ये अपना लिमिटेड है पीरियड, हम दूसरे को तो अनित्य मानता है, अपने को नहीं मानता। पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तो भी दूसरे को तो अनित्य मानता है, अपने को नहीं मानता, ये कहना है। दूसरे को जरूर अनित्य समझ लेता है, यानी दूसरे की अनित्यता तो मन में भर रखी है कि यह उसका है मिट जाता है, लड़के उसके है वे मर सकते हैं, यह दूसरा है मर सकता है, किंतु मैं कहाँ मरने वाला हूँ, यानी मैं भी उसमें है एक हूँ ऐसा नहीं लगता इसको। अपने पक्ष का खंडन कुछ नहीं कर सकता, दूसरों के परिवार धन बच्चों के प्रति यह मान लेता है कि इनका है क्या, भला अपने घर वालों को ऐसा कह पाता है क्या। उस जीव का स्वरूप विलक्षण कुछ अलग बैठा है क्या, किसका कौन है, यानी दूसरों के लिए ये धन तेरा नहीं है, बच्चे तेरे नहीं है, तेरे हो सकते हैं क्या, ऐसा उसको बोल देगा, और अपने बारे में वो ऐसा नहीं कह रहे। कोई आदमी अपने देश से भागकर लुटिया डोर लेकर चला, दो एक रुपया लेकर चला, किसी शहर में ठहर गया, वह 10-5 वर्ष में हो गया लखपति। उसने यह नहीं सोचा अपने को, यह लाखों का धन मेरा नहीं है। ये लुटिया डोर समझते हैं, डोरी और लोटा, हाँ लोटा और डोरी, हाँ इतना लेकर चला था और वहाँ लखपति हुआ, ये अपने यहाँ अरबोपति हुए ना। हाँ किसी साल में आ गया टोटा, रह गए कोरे, तब उसने समझ लिया कि मैं लुटिया डोर लेकर ही तो आया था, मेरा क्या है, ऐसा ही आया ऐसे ही गया। इसी तरह से वियोग होने पर तो हमने समझ लिया कि हमारा कुछ नहीं है, न मेरा कुछ होगा, पहले भी कुछ नहीं था। पुण्योदय से ने पुण्य के उदय से जो जो मिला है वह सब हमारा कुछ नहीं है। यानी जब है अपने साथ तभी हमारा नहीं है नक्की करना है, चले जाने के बाद तो कहना अरे हमारा नहीं था वो चला गया। यह सब तो परवस्तु है, यह बात तब समझ में आती है जब उसका वियोग हो जाता है। जैसे दादा दादी वगैरह जो मर चुके हैं उनके बारे में तो यह निर्णय कर लिया है कि वे मेरे नहीं थे, किंतु जो अभी समागम में है उनको नहीं सोच पाता कि ये मेरे नहीं। ख्याल में ना, ये हमारी आपकी सबकी बात है। यानी जो चले गए अभी हमारे पिताजी नहीं रहे तो नहीं तो हमारे तो तभी उन्होंने दूसरी जगह जन्म लिया, वो तो हमारे थे नहीं, हमारा इतना ही संयोग था, उसके बारे में तो सोच लेता है। पर जो है अभी तो उनके बारे में तो ऐसा विचार भी करने को तैयार नहीं। सत्य विश्वास हो जाना कि उसका कुछ नहीं है यह कठिन है। सत्य है, विश्वास न करे तो भविष्य में भी जरा भी संतोष नहीं होगा। अपने यथार्थ स्वरूप को समझता है जो, उसी को ज्ञानी कहा है। जो वर्तमान में मिला है वह अत्यंत भिन्न है, इसका कोई स्वरूप मुझ में नहीं है, ऐसी दृष्टि वर्तमान में मिली हुई पदार्थों में आ जाए उसे कहते ज्ञानी। फिर पढ़ते हैं, जो अभी वर्तमान में जो संयोग रूप है वह भी अत्यंत भिन्न है, इसका कोई स्वरूप मुझ में नहीं है, ना कोई रिलेटिव, ना कोई धन, ना कोई घर, ना कुछ कोई वस्तु। ऐसी दृष्टि, ऐसी मान्यता, ऐसा ज्ञान वर्तमान में मिली हुई पदार्थों में आ जाए। वर्तमान में मिली हुई पदार्थ है नहीं, वर्तमान में जो संयोग रूप है जो अपने कहलाते हैं उसके बारे में ऐसा आ जाए उसे कहते ज्ञानी। ये तो नक्की है ना, इनका इतने काल तक संयोग होना है, रवि इसके बाद वियोग होना है, इसको वर्तमान में उसका एक्सेप्ट कर। मैं तो ज्ञाता हूँ, ज्ञाता पने के खूब बराबर लगा लो, अपने को राग रूप मानता है और उनके अभी वियोग हुआ नहीं, वियोग की कल्पना से दुखी होते हैं। ये अनिश्चित संयोग या इष्ट वियोग जो है होने के बाद रोता है वो बात अलग। अभी है अपने अपने मालिकी में है कोई धन वगैरह, अरे छूट जाएगा तो, गरीब हो जाए तो, हम अभी निरोगी है बीमार हो जाए तो मिली भाई तो आएगी ना हमको मदद करने के लिए दौड़ दौड़ कर। जिसने यह कर लिया उसका बेड़ा पार, और नहीं कर लिया तो यहाँ भी दुखी और मृत्यु के समय भी दुखी, और जहाँ जन्म लेगा वहाँ भी दुखी, सब जगह दुखी। ऐसे ही अज्ञान है, इस अज्ञान में हर जगह दुख है। जिस समय अज्ञान है तब तो दुख होगा, मरण के समय वियोग है तब दुख होगा, मरने के बाद जो भव पाया वहाँ दुख। तो भैया अज्ञान से हटकर अपने स्वरूप का निर्णय कर लो। ये तो निर्णय करना है, और निर्णय करने का ज्ञान भी अपने पास है। कुछ लेना नहीं देना नहीं है, कोई पैसा नहीं खर्च करना है, बस अपने स्वरूप का नक्की कर लेना। ये स्वरूप का निर्णय करने से जो संयोग में पैसे वो नहीं चले जाने वाले, जितने काल तक उसका संयोग है उसको बना रहेगा। अरे उससे हमको सुख है ही नहीं है, अरे उन्होंने कल्पना कर ली मेरा मेरा मेरा। जिसके पास वो तो करोड़ों की अब्जों की संपत्ति है, घर में कितना रखता है, वो सारा बैंक में कहीं कागज में कहीं नोट में वैसे लिखा हुआ है। आपके पास क्या है, एक लिखा हुआ कागज और क्या है
आजकल, वो भी नहीं मिलते हैं। क्या कैसा अकाउंट, डीमैट अकाउंट में सब लिखा रहता है,
वो सब उसमें है।
घर में अपने पास कुछ नहीं,
कुछ नहीं आपके पास। फिर भी हम इतने पति है, कितने अब्जों पति करोड़ पति है ना। पैसा अपने पास न्याय से थोड़ा श्रम करके जितना आए उसी में हिम्मत करके गुजारा करो। अपने हाथ के परिश्रम में जो आता है उसका संतोष कर, शर्म छोड़ दे कि दुनिया को कुछ दिखाना है। अब ये दुनिया को दिखाने के लिए तो सब दिखावा करता है, नहीं भी हो तो भी केवल भगवान को देखो, तुम्हारे ज्ञान में यह प्रभु आया कि नहीं। जो न्याय से मिले उसमें गुजारा करना एक तपस्या है। कुछ क्लेश है और कुछ क्लेश और क्लेश कुछ भी नहीं, तब तो इसका आनंद समझ में आएगा, नहीं तो धोखा खाएगा। अपने को ही देख ले, मेरा भगवान स्वरूप मेरी रक्षा कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। जब घरेलू कार्य धंधे बढ़ते हैं तो इसके मोक्ष मार्ग में बाधा डालते हैं। बात सही है ना, हर एक के अनुभव की है। सादगी से रहना मोक्ष मार्ग की बाधाओं को दूर करना है। जब शान चौकत कम कर दी जाती है तब सन्मार्ग में बुद्धि चलती है। जो ज्ञानी जीव है उस जीव को इतनी फुर्सत कहाँ कि वह शरीर के श्रृंगार करे, ये पार्लर में जाए, घंटा बिताए और क्या क्या करे। हाँ, ज्ञानी तो गृहस्थ में रहता जरूर है किंतु जल में कमलवत भिन्न है। उसको तो लौकिक काम करने पड़ते हैं क्योंकि वो तो अभी जो कुछ घर गृहस्थी में है तो करने पड़ते हैं, किंतु भावना यह है कि कब घर छोड़कर अपने स्वरूप में रम, स्वयं ज्ञाता मात्र बनूं। वो आता है ना, ए आवो अवसर क्या प्यारे अवसर अपूर्व अवसर, वो ज्ञानी की यही भावना रहती है। ऐसा ही स्वरूप सब जीवों में है। जो सर्वस्व मेरा स्वरूप स्वाधीन है, समता से भरा हुआ है, मैं अपने स्वाधीन उस शांत स्वरूप को देखकर अपने में अपने आप स्वयं सुखी होऊं। दूसरों की आशा न करे कि यह जीव उसे सुखी कर देगा, यह पदार्थ सुखी कर देगा। जब भी सुखी होंगे तब अपने ज्ञान से अपने में स्वयं ही सुखी होंगे। यानी कोई एक पदार्थ एक जीव दूसरे को सुखी दुखी कर भी नहीं सकता। चौबीसवां यत्रैव भासते विश्वं सोहं विश्वं न साकृति ज्ञाता दृष्टा स्वतंत्रोहं स्यां स्वस्मै से सुखी स्वयं। जहां ही सारा विश्व अर्थात पदार्थ प्रतिभासित होता है वह तो मैं हूँ, किंतु मैं विश्व नहीं हूँ। क्या कहना चाहते हैं? ये सारी चीजें कहाँ प्रतिभासित, कहाँ ख्याल में आती, ज्ञान में? तो मेरे में, आत्मा में सब कुछ जाना जा रहा है। हम कहीं बाहर नहीं जानने की, यहाँ बैठे बैठे अपने ही ज्ञान की पर्याय सबको जानने वाले स्वभाव की। यही कहते कि सारा विश्व यानी सभी पदार्थ अपने में प्रतिभासित होते हैं, ज्ञाते जाने जाते हैं। वह तो मैं हूँ, जहाँ जानना हो रहा है वह तो मैं हूँ, पर मैं विश्व स्वरूप नहीं। ख्याल नहीं आती ना, विश्व को जानने वाले स्वभाव का हूँ, मैं विश्व रूप नहीं हूँ। और न साकार अथवा प्रतिभासित पदार्थ की उस आकृति रूप, मैं ज्ञेय रूप नहीं हूँ या ज्ञाकार रूप नहीं हूँ, मैं तो ज्ञानाकार हूँ। कौन से पदार्थ को जान रहे उसको कहने के लिए वो ज्ञेय का नाम लेना पड़ता, परंतु वो तो है सब कुछ। जानने मात्र की क्रिया मेरे में हो रही है। ये जो मेरे में जो कुछ जानने रूप कार्य हो रहा है उसका मटेरियल क्या है, रॉ मैटर क्या है? तो ज्ञान है, वो ज्ञानमय है। ज्ञानमय रहते हुए सभी पदार्थों को जान लेता है, ये तो ज्ञान की विशेषता। मैं तो जानने वाला देखने वाला स्वतंत्र हूँ, सो अपने ही तंत्र रहता हुआ स्वतंत्र है ना, अपने ही तंत्र रहता हुआ मैं अपने में अपने लिए अपने आप सुखी हो। अब यही रुकेंगे क्योंकि अभी बड़ा पैराग्राफ है। जावानी के ज्ञान से सुझे लो कालो सोवाणी मस्तकनं सदा देत हो।
नमो जयताम नमो सीताम नमो आय नमो वजाय नमो लोय सुताम। नमो अर्यता नमो सिद्धान नमो आयर्यान नमो वज्रायान नमो लोहे संतान नमो अर्यता नमो सिद्धान नमो आयर्यान नमो वज्रायान नमो लोहे संतान